नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब की आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता होगी। दोनों नेता आपसी सहयोग को विभिन्न क्षेत्रों में और सुदृढ़ करने पर चर्चा करेंगे, साथ ही क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार साझा करेंगे। वार्ता के बाद कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। श्री स्टब का आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से राष्ट्रपति भवन में मुलाकात का भी कार्यक्रम है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर भी श्री स्टब से मुलाकात करेंगे। राष्ट्रपति स्टब नई दिल्ली में आज शाम आयोजित होने वाले 11वें रायसीना संवाद 2026 में मुख्य अतिथि और प्रमुख वक्ता होंगे। राष्ट्रपति स्टब की यात्रा विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने तथा परस्पर संबंधों को बढ़ाने की दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है। भारत के प्रमुख भू राजनीति और भू अर्थव्यवस्था सम्मेलन रायसीना संवाद का 11वां संस्करण आज से नई दिल्ली में शुरू होगा। 3 दिवसीय इस सम्मेलन में वैश्विक नेता, नृत्य निर्माता, विशेषज्ञ अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों और रणनीतिक सहयोग पर विचार विमर्श करेंगे। इस वर्ष का विषय है संस्कार, दृढ़ता, सामंजस्य और उन्नति।
वर्ष 2016 में स्थापित वार्षिक संवाद अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर चर्चा के लिए भारत का अग्रणी मंच बनकर उभरा है। सम्मेलन में कई विदेशी गणमान्य व्यक्तियों के भाग लेने की उम्मीद है। भूटान के विदेश मंत्री लियोपो दीनानाथ धुंगेल कल भारत पहुंच चुके हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रतिनिधित्व उप विदेश मंत्री क्रिस्टोफर लैंडो करेंगे। अन्य प्रमुख प्रतिभागियों में सेशल्स के विदेश मामलों और प्रवासी मामलों के मंत्री बैरी फॉरे, मॉरिशस के विदेश मामलों, क्षेत्रीय एकीकरण और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री धनंजय रामफुल और श्रीलंका के विदेश मामलों, विदेश रोजगार और पर्यटन मंत्री विजीता हेरत शामिल है।
मॉरिशस के विदेश मामलों, क्षेत्रीय एकीकरण और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री धनंजय रामफल रायसीना संवाद 2026 में भाग लेने के लिए नई दिल्ली पहुंचे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने उनका स्वागत करते हुए सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत और मॉरिशस संस्कृति और विरासत तथा मजबूत जन संबंधों पर आधारित एक स्थायी साझेदारी साझा करते हैं। 10 राज्यों में 37 राज्यसभा सीटों के लिए नामांकन दाखिल करने की आज अंतिम तिथि है। नामांकन पत्रों की जांच कल की जाएगी। उम्मीदवार 9 मार्च तक नाम वापस ले सकते हैं। इन सीटों के लिए मतदान 16 मार्च को होगा और परिणाम उसी दिन घोषित कर दिए जाएंगे। इस बीच कांग्रेस ने राज्यसभा के लिए 6 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। पश्चिम एशिया में संघर्ष और तेज हो गया है। इजरायली रक्षा बलों ने ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल बेड़े से जुड़े कई ठिकानों को नष्ट करने का दावा किया है। इस बीच अमरीकी वायुसेना ईरान पर लगातार भारी हवाई हमले कर रही है। अमरीकी केंद्रीय कमान ने कहा कि उनके बलों ने 20 से अधिक ईरानी जहाजों को नष्ट कर दिया है। इस बीच श्रीलंका की नौसेना ने ईरान की नौसेना के पोत आयरिस देना के 84 नाविकों के शव बरामद कर लिए हैं। ये पोत श्रीलंका के दक्षिण के समुद्र में अमरीकी पनडुब्बी के हमले के बाद डूब गया था। ये घटना हिंद महासागर में श्रीलंका की समुद्री सीमा से परे अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में घटी। लापता लोगों की तलाश के लिए खोज अभियान जारी है। उधर ईरान ने कहा है कि अगर इसराइल और अमरीका ईरान के शासन को समाप्त करने की कोशिश करते हैं तो वह इसराइल के दिमोना परमाणु संयंत्र को निशाना बनाएगा। ईरान ने इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 के 19वें चरण के तहत मिसाइल और ड्रोन हमले तेज कर दिए हैं। चीन ने खाड़ी क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच पश्चिम एशिया में सैन्य अभियान रोकने का आग्रह किया है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि चीन क्षेत्रीय देशों द्वारा राजनयिक माध्यमों से विवादों को सुलझाने के प्रयासों का समर्थन करता है। एयर इंडिया ने पश्चिम एशिया में मौजूदा हालात के बीच अधिक मांग को देखते हुए टोरंटो, फ्रैंकफर्ट और पेरिस चार्ल्स डे गॉल के लिए अतिरिक्त क्षमता वाली उड़ानें संचालित करने की घोषणा की है। नेपाल में संसदीय चुनावों के लिए मतदान जारी है। ये चुनाव पिछले वर्ष सितंबर में युवा नेतृत्व वाले प्रदर्शनों के बाद पहला आम चुनाव है। उन प्रदर्शनों में 77 लोगों की मौत हुई थी और सरकार को इस्तीफा देना पड़ा था। आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला आज भारत और इंग्लैंड के बीच होगा। ये मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में शाम 7 बजे से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।